ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं आज से अगले आदेश तक बंद रहेंगी। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज बड़ी संख्या में आगंतुक मेले का आनंद लेने भारत मंडपम पहुंचे और अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी। दिनभर मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। सरकार कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एल मुरुगन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, एमडीएम के सांसद वाइको, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और अन्य सांसद शामिल हुए। शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री बिरला ने उम्मीद जताई कि सांसद सकारात्मक और रचनात्मक बहस की परंपरा में योगदान देंगे। उन्होंने सांसदों से संसद में मर्यादा के उच्चतम मानक स्थापित करने की अपील की।
हम इसी तरीके से उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित करें जहां चर्चा और संवाद हो, जहां सहमति असहमति भी हो, विचारों की अभिव्यक्ति भी हो, लेकिन हमारा आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप, हमारा आचरण संसदीय डिबेट चर्चाओं के आचरण की तरह हो।
आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री बिरला ने कहा कि राजनीतिक दल इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी आरक्षण के प्रावधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की।
आज भी समाज में दलित शोषित पीड़ित व्यक्तियों को उनके समानता, उनके व्यापक अधिकार आरक्षित करने का अभी समय है और इसीलिए हर सरकारों ने ये प्रयास किया है कि संविधान के साथ आरक्षण को लेकर कभी कोई सरकार ने छेड़छाड़ नहीं की। मेरा मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा संविधान के मूल विचार और आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट नीति स्पष्ट विचार रखे।
मंगलवार को मनाए जाने वाले संविधान दिवस से पहले श्री बिरला ने संविधान पर खतरे के सभी दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संविधान देश के लोगों का है और समाज के सभी वर्गों का इसमें विश्वास है। श्री बिरला ने कहा कि संविधान को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष का पूरा साक्षात्कार 100.1 FM गोल्ड पर कल शाम 7:10 पर प्रसारित होने वाले आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम सुर्खियों में सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1,00,000 युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा, तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है।
आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस पर श्री मोदी ने कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण किया और युवाओं से एनसीसी से जुड़ने का आग्रह किया।
एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है।
प्रधानमंत्री ने बढ़ते शहरीकरण के कारण गौरैया के अस्तित्व पर खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बच्चों के जीवन में गौरैया को वापस लाने के लिए किए जा रहे कुछ अनूठे प्रयासों के उदाहरण भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उन्होंने पूरे देश के लोगों के इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली भाजपा ने आज राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के कारण आज बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता है और साथ ही अब भारत धीरे धीरे कैश फ्री होकर डिजिटल बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को राजनीति में लाने के लिए दिल्ली भाजपा भी प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को लेकर जन जन तक जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर BWG के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर BWG को स्वयं पंजीकृत करने और कचरे के उचित पृथककरण, प्रसंस्करण और निपटान सहित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल प्रणाली प्रदान करेगा। निगम ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर से जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के अलावा ये पहल लैंडफिल साइट पर बोझ कम करने की निगम की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर को जल्द से जल्द ऐप या पोर्टल के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण या उचित अपशिष्ट प्रबंधन का अनुपालन न करने पर लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली NCR के फरीदाबाद में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदनकर्ता 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के मंडल रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर प्रार्थी जिनके 31 अक्टूबर 2024 तक बेरोजगारी के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए इस महीने के अंत तक hrex.gov.in सरकारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के पास संबंधित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए और 1 नवंबर तक 3 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाहित महिला के मामले में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा, न कि माता पिता या भाई बहन। बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आवेदक फरीदाबाद सेक्टर 12 में मिनी सचिवालय स्थित मंडल रोजगार कार्यालय में जाकर या दूरभाष नंबर 01292299958 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज राजधानी के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में नई होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के शुरू होने पर बधाई दी। उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को जनता की सेवा में समर्पित करने के लिए और जनसेवा के लिए स्थानीय पार्षद राजपाल सिंह की प्रशंसा की। सरकार कल नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं की शुरुआत करेगी। इस अभियान में जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया जाएगा। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक साझा प्रयास है। इस दौरान अब कोई बहाना नहीं शीर्षक से एक फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा के तीसरे चरण में आज अंबेडकर नगर और संगम विहार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा के साथ सड़कों पर उमड़े जनसैलाब से प्रतीत होता है कि लोग कांग्रेस को एक नई उम्मीद और भविष्य के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के साथ लोग बदलाव करने में सहयोगी बनने और मिलकर दिल्ली का विकास करने, कांग्रेस की पहले जैसी दिल्ली बनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की निष्क्रियता के कारण राजधानी की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। दिल्ली भाजपा सह प्रभारी डॉ अलका गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने आज मटियाला विधानसभा क्षेत्र के कंगनहेड़ी गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ गुर्जर ने कहा कि दिल्ली के गांवों में लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं जो अभी भी खेती किसानी के काम में लगी हैं, दिल्ली सरकार की उदासीनता के कारण परेशान हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज रविवार की छुट्टी वाले दिन बड़ी संख्या में आगंतुक मेले का आनंद लेने भारत मंडपम पहुंचे। सबसे ज्यादा भीड़ विदेशी स्टॉलों पर देखी गई। इनमें अफगानिस्तान, तुर्की, थाईलैंड, चीन, मिस्र और ईरान के स्टॉल शामिल हैं। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में विदेशी स्टॉलों के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के देशी उत्पाद और व्यंजनों का जायका लेते हुए भी लोग नजर आए। एक रिपोर्ट।
43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगभग 3,500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश से आगंतुकों का आना लगा हुआ है। खाद्य पदार्थों में सूखे मेवों का बोलबाला रहा, हस्तशिल्प उत्पाद तथा खिलौने के स्टॉल पर भी रौनक रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज व्यापार मेले में NTPC मंडप का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर साल व्यापार मेले के दौरान बिजली विभाग एक स्टॉल लगाता है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी देनी बहुत जरूरी है। वहीं राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश तथा बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने व्यापार मेले में बिहार के पवेलियन का संयुक्त रूप से आज उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने बताया कि आज 1.5 से 2 लाख लोगों ने मेले का आनंद उठाया।
आज लोग काफी उत्साह के साथ काफी सारे पवेलियंस में घूम रहे हैं। इस बार 33 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी जिसमें भाग ले रही हैं।
27 तारीख तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के सामान्य दिनों में वयस्कों के लिए टिकट की कीमत 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए रखी गई है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क है। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक व्यापार मेले का आनंद ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, नई दिल्ली।
जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं आज पूरे दिन बंद रहीं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि अगले आदेश तक मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं बंद रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर के पंजीकरण के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।